एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, एकत्र ज्ञान गोष्ठी में फिर से आप सबका स्वागत। आज हम विज्ञान के एक ऐसे कोने में झांक रहे हैं जो सुनने में शायद थोड़ा भारी लगे, ऊष्मप्रवैगिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स।
हाँ, नाम थोड़ा तकनीकी है।
बिल्कुल, लेकिन असल में ये हमारी दुनिया को, मतलब हर चीज को चलाने वाले नियमों का सेट है।
एकदम, और आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे पीटर एटकिंस के नजरिए से। उनकी किताबें हैं द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और एक और है द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। हम इन्हीं के सार पर आज बात करेंगे।
हाँ, एटकिंस कमाल के लेखक हैं इस विषय पर।
बिल्कुल, और देखिए, थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ लैब की बात नहीं है ना, ये तो ये बताता है कि ऊर्जा कैसे काम करती है, क्यों क्यों गरम चाय ठंडी हो जाती है।
हाँ, पर ठंडी चाय खुद गरम नहीं होती, वही, या समय आगे ही क्यों बढ़ता है, और तो और जीवन जैसी पेचीदा चीज कैसे मुमकिन हुई, ये सब इन्हीं नियमों से जुड़ा है।
तो ये ब्रह्मांड के कुछ बुनियादी हाँ और ना हैं, कह सकते हैं।
हाँ, और आज ये और भी जरूरी हो गया है। ऊर्जा है, दक्षता है, प्रकृति की सीमाएं, ये सब हमारे भविष्य के लिए कितने अहम सवाल हैं।
सही कहा। तो आज हमारा इरादा यही है कि इन चार नियमों को एटकिंस की मदद से आसान भाषा में समझें, देखें कि ये हमारी रोज की जिंदगी, हमारी तकनीक और शायद हमारी सोच पर भी कैसे असर डालते हैं।
चलिए शुरू करते हैं।
तो पहले लेखक की बात कर लेते हैं, पीटर एटकिंस।
हाँ, पीटर विलियम एटकिंस जाने माने ब्रिटिश रसायनज्ञ हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में फिजिकल केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे हैं, पर उनकी असली पहचान शायद एक बेहतरीन विज्ञान लेखक के तौर पर है।
हाँ, मैंने भी उनकी फिजिकल केमिस्ट्री वाली किताब देखी है, बहुत चलती है वो तो।
बिल्कुल, दुनिया भर में पढ़ी जाती है, और थर्मोडायनामिक्स तो उनके काम का एक मुख्य हिस्सा रहा है।
लेकिन उनकी खासियत सिर्फ विषय की जानकारी नहीं है, है ना, कुछ और भी है।
सही पकड़ा, उनकी सबसे बड़ी खूबी है उनकी भाषा, उनका स्टाइल। वो विज्ञान के पीछे जो एक खूबसूरती है, एक दर्शन है, उसे पकड़ते हैं।
मतलब सिर्फ फॉर्मूला नहीं।
नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके लिए थर्मोडायनामिक्स सिर्फ समीकरण नहीं, बल्कि असलियत को समझने का एक जरिया है। और वो मुश्किल बातों को भी इतनी आसानी से, इतने अच्छे ढंग से समझाते हैं कि कोई भी उनमें खो जाए।
विज्ञान को इंसानी बनाते हैं।
हाँ, उसे जीवन से जोड़ते हैं।
अच्छा, तो अब आते हैं मुद्दे पर। थर्मोडायनामिक्स, जैसा आपने कहा, ये सिर्फ इंजन और फ्रिज का विज्ञान नहीं है। एटकिंस इसे चार नियमों के अध्ययन की तरह देखते हैं जो ऊर्जा, उसकी गुणवत्ता और बदलाव की दिशा तय करते हैं।
और उनका जो मुख्य तर्क है वो बड़ा दमदार है। वो कहते हैं कि ये सिर्फ चार नियम मिलकर ब्रह्मांड की हर भौतिक प्रक्रिया को कंट्रोल करते हैं।
हर प्रक्रिया को, छोटे से परमाणु से लेकर।
हाँ, परमाणु के कंपन से लेकर तारों के बनने बिगड़ने तक, ये नियम बताते हैं कि क्या हो सकता है और क्या क्या कभी नहीं हो सकता। ये संभावना की लकीरें खींचते हैं।
तो एटकिंस असल में किस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं? शायद ये कि ब्रह्मांड किन सीमाओं में काम करता है और ये आसान से दिखने वाले नियम इतने गहरे कैसे हैं।
बिल्कुल, और ये चर्चा हर उस इंसान के लिए है जो अपने आसपास की दुनिया को समझना चाहता है। आपकी साइंस बैकग्राउंड हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
अगर आप दुनिया के ऑपरेटिंग सिस्टम में दिलचस्पी रखते हैं तो।
हाँ, तो ये नियम आपको हैरान भी करेंगे और शायद कुछ सिखाएंगे भी।
ठीक है, तो फिर उतरते हैं नियमों की दुनिया में। शुरू करते हैं एकदम बेसिक से, तापमान और संतुलन। थर्मोडायनामिक्स है तो ऊर्जा का अध्ययन, खासतौर पर गर्मी और काम के रूप में। तापमान हम सोचते हैं बस ठंडा गर्म बताता है, पर थर्मोडायनामिक्स में ये वो गुण है जो तय करता है कि गर्मी किधर बहेगी।
और गर्मी वो ऊर्जा है जो तापमान के फर्क की वजह से बहती है, हमेशा गर्म से ठंडे की ओर।
यहीं पर आता है पहला दिलचस्प नियम, शून्यवाह नियम, जीरोथ लॉ। ये नाम बड़ा अजीब
है ना, शून्यवाह। वो इसलिए कि ये पहले तीन नियमों के बाद बना, पर इतना बेसिक है कि इसे सबसे पहले होना चाहिए था। नियम सीधा सा है, अगर दो सिस्टम है, मान लीजिए ए और बी, और वो अलग अलग एक तीसरे सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है,
मतलब उनके बीच गर्मी का लेन देन नहीं हो रहा।
हाँ, तो ए और बी आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे।
सुनने में तो सीधा लगता है, जैसे अगर मेरी चाय और टेबल दोनों कमरे के तापमान पर हैं, तो चाय और टेबल भी एक ही तापमान पर होंगे।
पर इसका फायदा क्या है?
फायदा बहुत बड़ा है, इसी नियम की वजह से थर्मोमीटर काम करता है। सोचिए, थर्मोमीटर सिस्टम सी आपके शरीर का तापमान लेता है, फिर वही थर्मामीटर किसी और चीज का तापमान लेता है और रीडिंग वही आती है, तो आपको पता चल जाता है कि आपका शरीर और वो चीज एक ही तापमान पर हैं।
अच्छा, तो इसने तापमान को एक भरोसेमंद मापने लायक चीज बना दिया।
बिल्कुल, इसके बिना आगे के नियमों को समझना, ऊर्जा के बदलाव को मापना बहुत मुश्किल होता। ये एक तरह से नींव है।
समझ गया। अब आते हैं पहले नियम पर। ये शायद सबसे ज्यादा जाना पहचाना है, ऊर्जा संरक्षण का नियम।
हाँ, कि ऊर्जा न बनती है न नष्ट होती है,
बस
बस
रूप बदलती है ना?
ये यूनिवर्स का हिसाब किताब रखने वाला नियम है, एक कॉस्मिक बैलेंस शीट।
हाँ, ऊर्जा कहीं गायब नहीं होती। इसमें तीन मुख्य चीजें हैं। एक है आंतरिक ऊर्जा, यू, मतलब सिस्टम के अंदर की कुल ऊर्जा, अणुओं की गतिज और स्थितिज ऊर्जा मिलाकर।
ठीक।
दूसरी है ऊष्मा, क्यू, जो तापमान के अंतर से बहती है। और तीसरी है कार्य, डब्ल्यू, जब ऊर्जा का इस्तेमाल किसी चीज को हिलाने में होता है, जैसे गैस फैलकर पिस्टन को धकेलती है।
और इसका समीकरण था डेल्टा यू इक्वल्स क्यू प्लस डब्ल्यू।
एकदम, यानी सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा में बदलाव डेल्टा यू बराबर है उसे दी गई गर्मी क्यू और उस पर किए गए काम डब्ल्यू के जोड़ के। एटकिंस इसे बैंक अकाउंट की तरह समझाते हैं।
अच्छा, कैसे? आपका बैलेंस या जमा करने से गर्मी या काम मिलने से बढ़ता है, या निकालने से गर्मी या काम देने से घटता है, पर कुल पैसा या ऊर्जा सिस्टम में ही रहता है, कहीं गुम नहीं होता।
हाँ, ये अच्छी मिसाल है।
और इसका एक सीधा नतीजा ये है कि वो मशीनें जो बिना बाहर से ऊर्जा लिए हमेशा चलती रहें,
परपेचुअल मोशन मशीन,
हाँ, पहले प्रकार की, वो नामुमकिन है। पहला नियम कहता है भाई फ्री का लंच नहीं मिलता, ऊर्जा फोकट में नहीं बनती।
दिलचस्प। अब आते हैं उस नियम पर जिसे थर्मोडायनामिक्स का दिल कहते हैं, दूसरा नियम। ये थोड़ा रहस्यमयी लगता है। ये बताता है कि चीजें एक खास दिशा में ही क्यों होती हैं। जैसे कमरा अपने आप साफ क्यों नहीं हो जाता, बिखरता क्यों है, या धुआं हवा में क्यों फैलता है, वापस क्यों नहीं सिमटता।
सही पकड़ा। यही एंट्री होती है एंट्रोपी की। एंट्रोपी को अक्सर अव्यवस्था या डिसऑर्डर कह देते हैं, पर ये उससे थोड़ा ज्यादा गहरा है।
अच्छा।
हाँ, इसे समझने के दो मुख्य तरीके हैं। एक है क्लॉसियस का नजरिया। एंट्रोपी ऊर्जा के फैलने का माप है। ऊर्जा अपने आप गर्म से ठंडी जगह फैलती है, क्योंकि ऐसा करने से यूनिवर्स की कुल एंट्रोपी बढ़ती है।
मतलब ऊर्जा बिखर जाती है, कम उपयोगी हो जाती है।
हाँ, उसकी क्वालिटी घट जाती है। दूसरा नजरिया है बोल्ट्समैन का, जो ज्यादा स्टेटिस्टिकल है। एंट्रोपी ये मापता है कि किसी सिस्टम के हिस्से कितने अलग अलग तरीकों से अरेंज हो सकते हैं ताकि सिस्टम बाहर से वैसा ही दिखे।
जैसे साफ कमरा बनाम गंदा कमरा।
बिल्कुल, एक साफ कमरे में चीजें कुछ ही तरीकों से रखी हो सकती हैं, कम एंट्रोपी, पर बिखरे हुए कमरे में चीजें हजारों तरीकों से बिखरी हो सकती हैं और कमरा बिखरा ही दिखेगा, ज्यादा एंट्रोपी।
तो मतलब चीजें ज्यादा अव्यवस्थित इसलिए होती हैं क्योंकि अव्यवस्थित होने के तरीके ज्यादा हैं।
एकदम, और यही दूसरे नियम का सार है। कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मतलब जो अपने आप हो, उसमें एक अलग थलग सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम की कुल एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है या स्थिर रहती है, पर घटती कभी नहीं।
और ब्रह्मांड एक आइसोलेटेड सिस्टम है।
हाँ, जहां तक हम जानते हैं तो ब्रह्मांड लगातार अधिकतम एंट्रोपी की ओर बढ़ रहा है। यही है समय का तीर। ये बताता है कि समय हमेशा आगे क्यों बढ़ता है, क्योंकि भविष्य हमेशा अतीत से ज्यादा एंट्रोपी वाला होता है।
वाह, टूटा अंडा वापस नहीं जुड़ता, क्योंकि टूटे हुए अंडे के अरेंजमेंट के तरीके कहीं ज्यादा हैं।
बिल्कुल,
ये तो समय की दिशा को फिजिक्स से जोड़ देता है। इसके और क्या नतीजे हैं? मैंने सुना है ये इंजन की एफिशिएंसी से भी जुड़ा है।
हाँ, दूसरा नियम किसी भी इंजन की दक्षता पर एक फंडामेंटल लिमिट लगाता है। सैंडी कार्नोट ने दिखाया था कि कोई भी इंजन, चाहे कार का हो या पावर प्लांट का, गर्मी को 100% काम में नहीं बदल सकता।
क्यों?
क्योंकि कुछ गर्मी हमेशा एक ठंडे सिंक, जैसे कि हमारे वातावरण में, जानी ही चाहिए। ऐसा करके ही ब्रह्मांड की कुल एंट्रोपी बढ़ती है। इसीलिए इंजन गर्म होते हैं और ऊर्जा बर्बाद होती लगती है, पर वो बर्बादी नहीं, नियम का पालन है।
और केमिस्ट्री में भी इसका रोल है ना, गिब्स फ्री एनर्जी।
बिल्कुल, गिब्स मुक्त ऊर्जा जी, ये बताती है कि कोई केमिकल रिएक्शन किसी तापमान और दबाव पर अपने आप होगी या नहीं। रिएक्शंस तभी होती हैं जब वो सिस्टम की फ्री एनर्जी को कम करती हैं।
फ्री एनर्जी,
ये क्या है?
ये असल में दो चीजों का बैलेंस है, सिस्टम की ऊर्जा कम करने की इच्छा एंथैल्पी और उसकी अव्यवस्था बढ़ाने की इच्छा एंट्रोपी। जो रिएक्शन इन दोनों को साध कर फ्री एनर्जी घटा दे वो हो जाती है, जैसे लोहे में जंग लगना।
अच्छा, चुनेवा पहला, दूसरा, अब आते हैं तीसरे नियम पर। यह परम शून्य एब्सोल्यूट जीरो से जुड़ा है, क्या कहता है ये?
तीसरा नियम कहता है परम शून्य तापमान पर यानी जीरो केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस पर एक परफेक्ट क्रिस्टल की एंट्रोपी शून्य होती है।
परम शून्य पर एंट्रोपी शून्य मतलब कोई अव्यवस्था नहीं, बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर।
हाँ, थ्योरी में तो यही है, परम शून्य पर परमाणुओं की सारी थर्मल मूवमेंट रुक जाती है और एक परफेक्ट क्रिस्टल में सारे परमाणु एकदम सटीक जगह पर होते हैं, तो उनके लिए सिर्फ एक ही अरेंजमेंट मुमकिन है। और जैसा हमने देखा, एंट्रोपी अरेंजमेंट्स की संख्या का माप है, अगर सिर्फ एक ही तरीका है तो एंट्रोपी शून्य।
और इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? क्या हम परम शून्य तक पहुंच सकते हैं?
नहीं, यही तो इसका एक बड़ा नतीजा है। तीसरा नियम ये भी बताता है कि परम शून्य तक पहुंचना नामुमकिन है। जैसे जैसे कोई सिस्टम परम शून्य के करीब जाता है, उसकी आखिरी बची हुई ऊर्जा को निकालना और भी मुश्किल होता जाता है। ये तापमान के सबसे निचले छोर पर एक दीवार खड़ी कर देता है।
अच्छा, और ये हमें किसी भी तापमान पर एंट्रोपी कैलकुलेट करने में मदद करता?
हाँ, ये उसका आधार बनता है। एटकिंस इसे पदार्थ की क्वांटम मैकेनिकल प्रकृति की फुसफुसाहट कहते हैं, क्योंकि ये क्वांटम इफेक्ट से जुड़ा है।
तो ये चारों नियम मिलकर एक पूरी कहानी कहते हैं कि ऊर्जा और बदलाव कैसे काम करते हैं, गैसों से लेकर हम इंसानों तक, सब पर लागू।
निश्चित रूप से, ये रिवर्सिबल इररिवर्सिबल प्रोसेस, स्पॉन्टेनिटी, इक्विलिब्रियम, फेज ट्रांजिशन जैसे पानी का भाप बनना, केमिकल रिएक्शंस और हाँ, हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म तक को समझने में मदद करते हैं। इनके असर जीवन की उत्पत्ति से लेकर ब्रह्मांड के भविष्य तक जाते हैं।
चलिए अब कुछ बड़े संदेशों को समेटते हैं जो एटकिंस के काम से निकलते हैं। पहला तो यही लगता है कि ये नियम अलग अलग नहीं है बल्कि जुड़े हुए हैं, एक यूनिटी दिखाते हैं।
बिल्कुल। दूसरा है समय की दिशा और इररिवर्सिबिलिटी। दूसरा नियम बताता है कि क्यों अतीत भविष्य से अलग है, क्यों चीजें एक ही तरफ जाती हैं, ये प्रकृति में एक दिशा तय करता है।
तीसरा, व्यवस्था और अव्यवस्था का ये खेल, एंट्रोपी सिर्फ बिखराव नहीं बल्कि संभावनाओं का गणित है। ये समझाता है कि क्यों हमें अपने घर, अपने समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है।
हाँ, भारत जैसे देश में सोचिए, इतनी विविधता, इतनी जटिलता, इसे चलाने के लिए कितने सिस्टम, कितने नियम, कितनी कोशिशें लगती हैं, ये भी तो एंट्रोपी के खिलाफ एक लड़ाई ही है।
चौथा, जीवन खुद थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ही काम करता है। हम मतलब जीवित प्राणी बाहर से ऊर्जा लेते हैं जैसे खाना, अपने अंदर व्यवस्था बनाते हैं कम एंट्रोपी, पर इस चक्कर में बाहर कई ज्यादा एंट्रोपी पैदा करते हैं, गर्मी, वेस्ट।
हाँ, एटकिंस की वो लाइन याद है, बढ़ती एंट्रोपी के बहाव में हम अस्थाई थर्मोडायनामिक भमर हैं।
हम इसी भमर का हिस्सा हैं।
पांचवा, टेक्नोलॉजी और तरक्की। हमारी सारी टेक्नोलॉजी, स्टीम इंजन से लेकर स्मार्टफोन तक, असल में इन्हीं नियमों को बेहतर ढंग से इस्तेमाल करना सीखने की कहानी है।
पर दूसरा नियम हमें एफिशिएंसी की सीमाओं की भी याद दिलाता है। कुछ भी 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता, ये हमारे तकनीकी उम्मीदों पर एक लगाम भी है।
और छठा, संभावना की सीमाएं। ये नियम बताते हैं क्या मुमकिन है, क्या नामुमकिन। ये प्रकृति के खेल के नियम हैं, हम इन्हें बदल नहीं सकते, बस समझ सकते हैं। हाँ, और इनके अंदर ही हमें काम करना है।
एटकिंस के लेखन में कुछ लाइनें ऐसी हैं जो याद रह जाती हैं, उन पे बात करें
जी।
एक है ऊष्मा प्रवेगिकी के नियम हमारे पास सार्वभौमिक विधान के सबसे करीब हैं। इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि ये नियम कहीं भी, कभी भी, हर चीज पर लागू होते हैं बिना किसी अपवाद के। ये प्रकृति के सबसे बुनियादी कानून है, इनसे ऊपर कुछ नहीं।
एक और है ऊर्जा संरक्षित है लेकिन उसकी गुणवत्ता घटती है, ये तो पहले और दूसरे नियम का निचोड़ है।
हाँ, ये बहुत खूबसूरती से बताता है कि कुल ऊर्जा पहला नियम तो उतनी ही रहती है, पर काम करने लायक ऊर्जा, जिसे हाई क्वालिटी कह सकते हैं, हमेशा कम होती जाती है क्योंकि एंट्रोपी दूसरा नियम बढ़ता है।
जैसे कोयले की केमिकल एनर्जी ज्यादा उपयोगी है बजाय उसे जलाने के बाद फैली हुई गर्मी के।
बिल्कुल।
और ये वाला, एंट्रोपी समय का तीर है,
ये दूसरे नियम की शायद सबसे फेमस व्याख्या है। एंट्रोपी का बढ़ना ही समय को एक दिशा देता है, अतीत को भविष्य से अलग करता है।
और वो जीवन वाली बात, हम बढ़ती एंट्रोपी के प्रवाह में अस्थायी थर्मोडायनामिक भंवर हैं।
ये हमें एक बड़े कैनवस पर रखता है। हमारा ये जटिल व्यवस्थित होना एक छोटी अस्थायी घटना है जो ब्रह्मांड की बढ़ती अव्यवस्था की कीमत पर मुमकिन हुई है। बड़ा विनम्र करने वाला विचार है ये।
आखिर में ये विचार कि एक भाप इंजन और एक जीवित कोशिका एक ही मौलिक सिद्धांत पर काम करते हैं, कि दोनों ऊर्जा के भाव का इस्तेमाल करके काम करते हैं और व्यवस्था बनाते हैं।
हाँ, ये सजीव और निर्जीव के बीच की दीवार को थोड़ा धुंधला कर देता है, दिखाता है कि जीवन कोई जादू नहीं बल्कि इन्हीं भौतिक नियमों का एक कमाल का नतीजा है। प्रकृति की गहरी एकता दिखाता है ये
सब सिद्धांत तो बहुत दिलचस्प हैं, पर क्या इनका हमारी रोज की जिंदगी से भी कोई लेना देना है?
अरे बिल्कुल है। घर से ही शुरू करें। हमारा फ्रिज, वो ठंडक बनाता नहीं है, वो बिजली का इस्तेमाल करके अंदर की गर्मी को बाहर फेंकता है।
अच्छा, दूसरे नियम का पालन करते हुए।
हाँ, एसी भी यही करता है। गर्म चाय का ठंडा होना, शक्कर का पानी में घुलना, ये सब थर्मोडायनामिक्स है।
हम खाना पकाते हैं, ऊर्जा का रूप बदलते हैं, ये सब रोज होता है।
और टेक्नोलॉजी में इंजन की एफिशिएंसी की बात हुई थी।
हाँ, कारों, पावर प्लांट की मैक्सिमम एफिशिएंसी इन्हीं नियमों से तय होती है। इंजीनियर हमेशा कोशिश करते हैं कि ऊर्जा की बर्बादी कम हो, पर वो दूसरे नियम को तोड़ नहीं सकते।
घरों में इंसुलेशन लगाना,
वो भी थर्मोडायनामिक्स है। गर्मी के भाव को रोकना, कंप्यूटर को ठंडा रखने के लिए हीट सिंक बनाना, ये सब इसी से जुड़ा है।
बायोलॉजी और केमिस्ट्री में तो है ही इनका महत्व
बहुत ज्यादा। गिब्स फ्री एनर्जी बताती है कि कौन सी दवा काम करेगी, कौन सी नहीं। हमारा पूरा मेटाबॉलिज्म, खाने से ऊर्जा लेना और शरीर बनाना थर्मोडायनामिक्स का ही खेल है। हम ऊर्जा लेते हैं, व्यवस्था बनाते हैं और एंट्रोपी बाहर फेंकते हैं।
यहाँ तक कि हमारे फैसलों पर भी असर, एक तरह से। हाँ, दूसरा नियम हमें इररिवर्सिबिलिटी सिखाता है। कुछ चीजें होने के बाद वापस पहले जैसी नहीं होती।
जैसे गुस्से में कुछ कह दिया तो?
हाँ, वो शब्द वापस नहीं लिए जा सकते, उसका असर हो चुका। ये हमें सोच समझकर काम करने की याद दिलाता है, क्योंकि हर एक्शन की एक दिशा होती है।
और शायद संगठनों या समाज पर भी, आपने कहा था व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऊर्जा चाहिए।
हाँ, जैसे किसी कंपनी को चलाने के लिए लगातार मेहनत, रिसोर्स लगते हैं, कोशिशें बंद हो जाएं तो चीजें बिखरने लगती हैं, अव्यवस्था बढ़ जाती है। ये एक तरह का सोशल थर्मोडायनामिक्स है।
तो इस पूरी चर्चा को समेटें, आपके लिए सबसे बड़ा सबक क्या रहा?
मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये चार देखने में सरल नियम मिलकर एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाते हैं जो यूनिवर्स की लगभग हर फिजिकल प्रोसेस को समझने में मदद करता है, उसकी सीमाएं भी और उसकी संभावनाएं भी। ये प्रकृति की भाषा के कुछ मूल अक्षर हैं।
और मेरे लिए ये एहसास कि थर्मोडायनामिक्स सिर्फ साइंटिस्ट्स के लिए नहीं है, ये सोचने का एक तरीका है, दुनिया को देखने का नजरिया, ये हमें ऊर्जा, समय, व्यवस्था, बदलाव के बारे में गहरी समझ देता है, जो रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर बड़े फिलोसॉफिकल सवालों तक काम आती है।
एक और बात जो मुझे छू गई वो ये कि एंट्रोपी का बढ़ना एक ही साथ एक लिमिट भी है और शायद सृजन का स्रोत भी। ये अजीब लगता है, पर जीवन जैसी जटिल चीजें शायद इसीलिए बनी क्योंकि यूनिवर्स ओवरऑल अव्यवस्था की तरफ जा रहा है।
बिल्कुल, एटकिंस का काम हमें विनम्र भी बनाता है और ताकत भी देता है। विनम्र क्योंकि हमें पता चलता है कि हम प्रकृति के किन नियमों से बंधे हैं, और ताकतवर क्योंकि इन नियमों को समझकर हम ऊर्जा का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने आसपास जानबूझकर व्यवस्था बना सकते हैं।
तो चलिए, सुनने वालों के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ते हैं। अगर ब्रह्मांड का अंतिम सच बढ़ती हुई अव्यवस्था है, तो इस बड़ी तस्वीर में हमारे द्वारा जानबूझकर, मतलब उद्देश्य और व्यवस्था बनाने की कोशिशों का क्या महत्व है? क्या ये एंट्रोपी के खिलाफ एक छोटा पर जरूरी विद्रोह है? सोचिएगा इस पर।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।